Blessed Savior, Om Namah Siddhebhya, Om Namah Siddhebhya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sauvasahunam, Kammatta Janiyaveyana, Uvai Samuttinnaye Jinenamiyum, Veyana Mahahiyaram, Vivihahiyaram Paruvemum. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना क्षेत्र विधान अनुयोग द्वार चल रहा है। अभी उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 50 पर आ गए हैं। यहाँ वेदना यानी कर्मों का क्षेत्र की बात चल रही है। पहले हमने उत्कृष्ट क्षेत्र देखा था। उत्कृष्ट क्षेत्र में घाती की अलग बात की, अघाती की अलग की, क्योंकि घाती में तो महामत से जो मारणांतिक समुद्घात करने वाला, उसका उत्कृष्ट क्षेत्र देखा था। और अघाती अलग क्यों ली, क्योंकि केवली समुद्घात अवस्था में उनका पूरा लोक इतना क्षेत्र हो जाता है, तो उसको अलग लिया। परंतु जघन्य में तो दोनों समान होगी। तो जघन्य में जघन्य क्षेत्र कब होगा, तो जब कोई जीव छोटी अवगाहना वाला जीव है, तो उसका कर्म का क्षेत्र भी जघन्य होगा। तो उसमें यहाँ अवगाहना के अलग अलग भेद, जघन्य तो बता दिया, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, रुजुगति से जन्मा हुआ, आहार ग्रहण करने वाला तीसरा समय वाला, यानी तद्भव से भी तीसरा समय है उसको, क्योंकि रुजुगति से आया है ना, उसका भव का भी तीसरा समय और आहार ग्रहण का भी तीसरा समय। ऐसे जीव को जगन्य क्षेत्र होता है, क्योंकि उसकी अवगाहना जगन्य होती है। अब अजगन्यों के विकल्प हम देख रहे हैं, तो जीव की जो अवगाहना है उसको बता रहे हैं। तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जगन्य में जगन्य अवगाहना, उसमें एक प्रदेश बढ़ा दो प्रदेश बढ़ा दो तीन प्रदेश बढ़ा दो, ऐसे अवगाहना के जो अलग अलग विकल्प है उसको हमने कल देखा था। तो पहले पॉइंट पर सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना, पहले पांच तो सूक्ष्म लेना, सूक्ष्म निगोद, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल और फिर पृथ्वी। उसके बाद बादर का नंबर, बादर में निगोद पहला नहीं लेना, वायु के लेना, तेज को लेना, जल का एक लेना, पृथ्वी बीच में निगोद है ना उसमें, पृथ्वी का एक भी आता है उसमें, पृथ्वी के बाद निगोद और फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक लिया, ये छह हो गए। फिर उसके बाद अप्रतिष्ठित प्रत्येक, वो सबकी लब्धि अपर्याप्त की लेना और जगन्य उगाना, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, उसके बाद वायु, सॉरी उसके बाद द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। उसके बाद फिर हमने तीन तीन ग्रुप देखे थे, उसमें तो पर्याप्त की जघन्य, अपर्याप्त की उत्कृष्ट और पर्याप्त की जघन्य, उत्कृष्ट पर्याप्त की भी उत्कृष्ट, ऐसे तीन तीन जोड़ी देखे। पहले सूक्ष्म के देखे, पांच प्रकार के सूक्ष्म हैं, तो उसकी तीन तीन जोड़ी देखी। और फिर छह प्रकार के हमने वो बादर वाले में छह लिए थे ना, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और द्विंद्रिय वगैरह, उसकी बात देखी थी। द्विंद्रिय नहीं लेना उसको, बादर लेना, बादर एकेंद्रिय लेना, तो उसके जो है उसके भी तीन तीन जोड़े लिए। उसके बाद वो द्विंद्रिय आदि के लेना, द्विंद्रिय की निवृत्ति अपर्याप्त, जो लब्धि अपर्याप्त की बात देखो हमने देखा था ना, मैं ये बताना चाहती है 50 और देखो 50 नंबर पर आए हम, 49 पेज पर। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जगन्य उगाना, फिर निवृत्ति द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की जगन्य उगाना 51 नंबर पर। अब यहां तक तो असंख्यात गुणा वाला प्रकरण था, इसके बाद तो तीन वृद्धियां ही होगी, अभी तक तो चार वृद्धियां होती थी 51 के बाद। फिर त्रिइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की जगन्य, फिर चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की जगन्य, पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की जगन्य 54 नंबर पर आए थे। अब निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट लेना है, उसमें पहले त्रिइंद्रिय को लेना, निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट में त्रिइंद्रिय को लिया 55 पर, और 56 पर चतुरिंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त लिया, और 57 पर द्विंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट उगाना। यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे। पश्चात इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से पचास नंबर निकालना, 50। तो एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से तीन वृद्धि द्वारा बादर वनस्पति का एक जो प्रत्येक वगैरह लिखा है इसको 58 नंबर देना। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश जाने तक बढ़ाना चाहिए। फिर इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से तीन वृद्धियों द्वारा, यहां तो मैक्सिमम संख्यात गुणा वृद्धि ही होगी 50 पान, और उसमें अभी हम 9वीं लाइन पर आ गए, 8वीं पूरी कर दी। तीन वृद्धियों द्वारा पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त की, देखो निवृत्ति अपर्याप्त को मैं क्रम कैसे लिया, पहले तीन्द्रिय लिया, फिर चतुरिंद्रिय लिया, फिर द्विंद्रिय लिया, फिर बीच में वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर निवृत्ति अपर्याप्त लिया, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, और फिर पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना ली। ये 59 पेज आ गए, 59 क्रम से 59 तक नंबर तक आ गए।
देखो इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो अभी हमने देखा 59 नंबर पर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, अभी देखो ये जीव भी हमारे आंखों से दिखते नहीं है, और इसके पहले हमने पंचेंद्रिय देखे, दो इंद्रिय देखे, तीन इंद्रिय देखे, ये उससे भी छोटे हैं। और हम जो कहते हैं हम, यानी शास्त्र में जो बातें आती हैं कि रात में भोजन करने का परिणाम जो है वो तो मांस भक्षण जैसा है, क्योंकि हमने देखा है कि दो इंद्रिय से आगे जीवों के मतलब मांस ऐसी संज्ञा है, और वो तो इतने छोटे होते कि कभी आके अपने थाली में गिर जाए या खाना बनाते वक्त बन आ जाए, हमारे आकलन यानी ज्ञान के बाहर की बात है। लेकिन अभी हम ये देखो 59 नंबर दिया है बादर एक इंद्रिय आई मीन इसका वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर वाले का, हाँ जी 58, चलो 58 ले लो, तो यानी इसके पहले 57 नंबर आ गए उसके अंदर जो हमें दिखते नहीं है कहाँ से कहाँ जा रहे,
अपर्याप्त होते हैं ना बन रहे हैं तो वो तो दिखाई नहीं देगा, हमें तो मोटे मोटे दिखते हैं।
तो हमको तो ऐसा लगता है शास्त्र में कुछ भी लिखते हैं सब नहीं, जो कुछ है वो बिल्कुल मतलब विथ लॉजिक और जस्टिफाइंग ऐसा है, यानी ये हम पढ़ते हैं फिर भी अपने को उसके साथ चरणान योग का भी कंपैरिजन करना चाहिए कि भाई क्या है उसमें।
देखो अभी 59 नंबर हमने डाला, अभी नीचे से 7वीं लाइन पर आए, कहां तक देखा हमने, पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त की उत्कृष्ट उगाना, अपर्याप्तों की यहां बात हो गई। फिर भी इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से तीन वृद्धियों द्वारा, तीन वृद्धियां ने असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुणा वृद्धि, एक 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 बढ़ते 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 इतने बढ़ जाएंगे। अभी नंबर है तीन निवृत्ति पर्याप्त, ऊपर निवृत्ति अपर्याप्त था, अभी पर्याप्त लेना। जोसना भाई नीचे से छठी लाइन चल रही है अपनी, हाँ तीन निवृत्ति पर्याप्त है ना, तीन पर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना, याद है किसकी है ये, सुना था। और ये तीन जो पर्याप्त जीव है उत्कृष्ट अवगाहना वाले, तीन चतुर इंद्रिय द्विंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं, स्वयंभू रमण द्वीप में, द्वीप में भी जो स्वयं प्रभ पर्वत है उसके उस पार आउटर साइड में, अंतिम जो है स्वयं रमण समुद्र है, स्वयं रमण समुद्र के अंदर जो द्वीप है उसका नाम है स्वयं रमण द्वीप, उसके बीचों बीच में, जैसे हमारा मानुषोत्तर पर्वत बीचों बीच है ना, पुष्कर को आधा कर देता है पुष्कर द्वीप को, वैसे यह स्वयं प्रभ पर्वत है वो स्वयंभू रमण द्वीप को आधे में कर, पूरा राउंड कंकणाकृति है उसके अदर साइड यानी परभाग में, परभाग यानी आउटर साइड में, वो जो द्वीप का आधा हिस्सा है पूरा ही राउंड ऐसा सर्कल, तो उसमें तो बड़ी बड़ी अवगाहना वाले वहाँ ये सारे प्राण, क्योंकि वहाँ कर्मभूमि सदृश वहाँ पोजिशन है, तो जैसे हमारे यहाँ द्विंद्रिय तीन्द्रिय पाए जाते हैं कर्म भूमि में, वैसे वहाँ भी पाए जाते हैं। ये भोग भूमि या बीच में जितने द्वीप है वहाँ कोई द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय नहीं पाए जाते, ये जो विकलेन्द्रिय जो है वो कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। जलचर तो होते ही नहीं बीच वाले समुद्रों में, द्वीपों में तो ये विकलेन्द्रिय भी नहीं, यानी जलचर पंचेन्द्रिय भी नहीं होते बीच वाले समुद्रों में, बीच वाले जो द्वीप है वहां पर हमने पहले देखे थे जघन्य भोग भूमि है तिरियंचों की, पहले ढाई द्वीप छोड़कर और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र और वो आधा द्वीप छोड़कर बीच वाले जितने द्वीप है, द्वीपों में जघन्य भोग भूमि तिरियंचों की है और समुद्रों में कोई जीव नहीं है जलचर जीव, वहाँ जल का है तो इटसेल्फ है परंतु उसमें कोई जलचर जीव नहीं, अभी किसी देव ने उठा के पटक दिया हो कोई तो हो सकता है वहाँ पर, क्या कहते नवचर तो रहेंगे तो पृथ्वी पर और घूम के आएंगे, अगर उसको तो समुद्र के जीव नहीं कहेंगे हम, हाँ जलचर को छोड़कर अन्य तिरियंच रहते हैं तो उसमें पक्षी भी आते हैं, तो ये हमने देखा अभी त्रिइंद्रिय को पहला लिया फिर दोबारा, ये हाँ मेरा प्रश्न था ये कौन सा त्रिइंद्रिय हमने देखा था, याद है कि नहीं, उत्कृष्ट अवगाहना वाला त्रिइंद्रिय, रक्त भिक्षु देखा था मेरे ख्याल से, हाँ नहीं रक्त भिक्षु चार इंद्रिय लिया तो तीन इंद्रिय वाला वो भूंगा भूंगा लिया था, चार भ्रमर लिया था, चार इंद्रिय भ्रमर लिया था, हाँ भ्रमर को लिया था चार इंद्रिय में, भ्रमर चार इंद्रिय को लिया था, ये रक्त भिक्षु ही है तीन इंद्रिय, और दो इंद्रिय में शंख देखा था और एक इंद्रिय में वो कमल देखा था, पंचेंद्रिय तो वो तो स्वयं रमण समुद्र में महामत्स्य है उत्कृष्ट अवगाहना वाला, ये अधिक से अधिक जिसकी अवगाहना शरीर का साइज उसके देख रहे हम, अभी हमने ये 60 नंबर पर देखा है त्रिइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, पश्चात इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से तीन वृद्धियों द्वारा यानी उसके संख्यात गुणा, चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की इसको नंबर देना 61, उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए, फिर इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से, एक प्रदेश ज्यादा, दो प्रदेश ज्यादा, तीन प्रदेश ज्यादा, इस तरह से तीन वृद्धियों द्वारा द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक। ये द्विंद्रिय बड़ा है यहाँ का हो, ये तो कौन है, ये शंख। निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। फिर इस अवगाहना को एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से तीन वृद्धि द्वारा बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए, वो जो कमल मैंने बताया। तत्पश्चात एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से तीन वृद्धियों द्वारा इस अवगाहना को पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की 64 नंबर पर उत्कृष्ट अवगाहना के सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिए। ये हमने जीवों के अवगाहना के अलग अलग भेद देखे, हर एक की रेंज अपनी अपनी अलग है। जघन्य से उत्कृष्ट तक उसकी अपनी अपनी रेंज होगी। तो हमें लगता है निगोद बहुत छोटे हैं, परंतु निगोद की जो रेंज शुरू हो गई, यानी यहाँ से सूक्ष्म निगोद शुरू हुआ, फिर उसी के अंदर वायु कायिक भी शुरू हुआ, वो तेज कायिक भी शुरू हुआ, इस तरह के, तो जाते 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 निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना के बीच में उसके पहले पहले पंचेंद्रिय तक के सब आ गए। उनकी जघन्य हो सकती है ना, इसकी उत्कृष्ट के बीच उसकी जघन्य छोटी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म छोटा है और बादर बड़ा है, क्योंकि सूक्ष्म की जो उत्कृष्ट अवगाहना है वो बादर के जघन्य अवगाहना से बड़ी है। तो हम ऐसी डेफिनेशन नहीं कह सकते सूक्ष्म के। हमने क्या देखे, वो तीन तीन ग्रुप देखे थे, तो उसमें बादर के जघन्य लिए पहले और उसके बड़ा सूक्ष्म की उत्कृष्ट भी देखे थे, या पर्याप्त पर्याप्त में भी ऐसा देखा था, पर्याप्त पर्याप्त में लगाया था। परंतु अभी हमने देखे ऐसे तीन कोठे किए, अभी हम चार पांच कोठे देखते। पहले वाले में पांच देखे, निगोद वायु तेज जल और पृथ्वी, फिर छह लिए, उसमें वायु तेज जल पृथ्वी फिर निगोद और फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक, ये छह लिए। उसके बाद फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेंद्रिय सबके लब्धि अपर्याप्त की जघन्य ली, ये जघन्य जघन्य यहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद दूसरे की जघन्य, इस तरह से हम आगे बढ़ते, तो ये पूरी रेंज जो होती है, यानी ये जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की उत्कृष्ट अभी नहीं आए, उसके पहले बादर की जघन्य आ गई, ये मैंने कहा था। सूक्ष्म की उत्कृष्ट बाद में आएगी और बादर की जघन्य उसके पहले आएगी, यानी जघन्य से उत्कृष्ट तक ये जो रेंज है पूरी अवगाहना की अलग अलग पर्यायों में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये जीव छोटे और ये जीव बड़े हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हम कहां से शुरू किया था जरा निकालना, ये चालीस पृष्ठ पर हमने शुरू किया था। यानी वो भागार कितना होता था जगन्न परिता संख्या से वगैरह वगैरह, और उसके आगे एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक इत्यादि भी वो सारी बातें की थी। यानी सूक्ष्म निगोद के बाद सूक्ष्म वायु कायिक वगैरह लिया था, सूक्ष्म निगोद को बहुत डिटेल में समझाया था। सूक्ष्म निगोद के भी पहले ये अजघन्य वेदना किसके होती है उसकी बात चल रही थी। जघन्य तो देखा हमने सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त को, जो जघन्य नहीं उसको छोड़ दो, एक एक प्रदेश बढ़ते 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 ये सारे ही अजघन्य विकल्प है। यहां तक बात हुई, अब हम आगे पढ़ेंगे। 51 नंबर पर यह पैराग्राफ नया शुरू होता है, चौथी लाइन। फिर विष्कम्भ व उच्छेद की अपेक्षा, विष्कम्भ ने उसकी मोटाई, और उत्सेद यानी उसकी हाइट, जैसे महामत्स्य की हम कहते लंबाई, आया मैंने वो लंबा कितना है, आड़ा लंबा है ना, तिरंचो में तो आड़ा आड़ी जो उसकी लेंथ है वो ज़्यादा है, तो महामत्स्य तो ऐसा 1000 योजन है और मोटा है 500 योजन और ऐसा है 200-250 योजन 250 योजन। तो 250 योजन को तो हम कहेंगे विश्व उत्सेद और विष्कम्भ उसका होगा 500। विष्कम्भ व उत्सेद की अपेक्षा महामत्स्य के सदृश व महामत्स्य के आयाम से संख्यात गुणे हीन आयाम वाले वो हजार, विष्कम्भ और उत्सेद तो उतना ही लेना और 1000 योजन के बदले अभी संख्यात्वा भाग लेना, 1000 का संख्यात्वा भाग कुछ भी हो सकता है, उसका 1/3 होगा, 1/5 होता है, जो कुछ होगा संख्यात्वा भाग, उतने संख्यात गुणे हीन आयाम वाले तथा मुख प्रदेश में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि को प्राप्त हुए अन्य एक प्राप्त मत्स्य के द्वारा पूर्व आयाम के साथ वेदना के बिना 1000 योजन मारणांतिक समुद्घात किए जाने पर महामत्स्य की अवगाहना से यह अवगाहना एक प्रदेश अधिक होती है। देखो क्या कहा, पहले तो पूरा एक उत्कृष्ट अवगाहना वाला मत्स्य लिया महामत्स्य, कितने 12.5 करोड़ घन योजन उसकी अवगाहना है, अब उसकी ही उतनी ही अवगाहना और किसके होगी, तो उसको ये कहते हैं विष्कम्भ और उत्सेद उतना ही लेना और आयाम में उसको संख्यात्वा भाग लेना और फिर वेदना के बिना। अब उसने मारणांतिक समुदात किया है 1000 योजन तक, हाँ आपका प्रश्न है 1000 योजन कैसे घटित होगा, क्योंकि नरक के बिल अभी नरक में क्यों भेज रहे उसको हाँ तिरंज का तिरंज में अभी स्वयं ब्रह्मण समुद्र आधा राजू 1/4 राजू जितना एक साइड में हो सकता है जलचर का वहीं उत्पन्न हो, है ना। तो उसने 1000 योजन मारणांतिक समुद्घात किए जाने पर महामत्स्य की अवगाहना से यह अवगाहना एक प्रदेश अधिक होती है, क्योंकि वो मुख प्रदेश में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि देखी थी। देखो लंबाई कुछ कम ली तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि समुद्घात करने पर तो 1000 योजन तक तो फैल ही गया, वो 1000 योजन तक फैले उसके प्रदेश, भले उसकी अवगाहना यानी उसकी लंबाई छोटी थी परंतु उसी डायरेक्शन में उसको फैलना हुआ ना, तो वो 1000 योजन हो गया और हमने मुख में एक प्रदेश बढ़ाया था, तो महामत्स्य की अवगाहना से बिना वेदना के अवगाहना से ये एक प्रदेश अधिक वाला हो गया। उत्कृष्ट अवगाहना हमने 64 तक दे देखे, उसमें एक प्रदेश अधिक किसके होगा उसकी ये बात है पश्चात देखो 4 लाइन तक हमने पढ़े, एक प्रदेश अधिक होती है क्योंकि वह मुख में वृद्धि को प्राप्त हुए एक आकाश प्रदेश से अधिक पाई जाती है, यानी उसकी बाकी अवगाहना तो सेम थी, ये 1000 योजन के बदले वो 1/3 था मान लेते हैं या कुछ भी था, परंतु मुख में उसकी वृद्धि थी, वहाँ एक प्रदेश बढ़ाया था और यहाँ मारणांतिक समुदात 1000 योजन करने से उसकी 1000 जितने बढ़ गई और वहाँ एक मुख में प्रदेश बढ़ गया, तो एक प्रदेश बढ़ गया उसका टोटल। पश्चात इसी प्राप्त मत्स्य के द्वारा यानी ऐसा ही जो मत्स्य हमने अभी देखा था, मुख में 2 आकाश प्रदेशों से वृद्धिंगत होकर 1000 योजन मारणांतिक समुद्घात किए जाने पर पूर्व क्षेत्र की अपेक्षा 2 प्रदेशों से अधिक विकल्प होता है। देखो एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए उसकी अवगाहना कब होती है उसकी ये बात बता रहे हैं। इस प्रकार इस क्रम से संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण आकाश प्रदेशों को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़कर स्थित क्षेत्र से एक प्रदेश अधिक 1000 योजन मारणांतिक समुद्घात करने पर प्राप्त मत्स्य का क्षेत्र समान होता है। अभी मारणांतिक क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, पहले वहां तो संख्यात प्रत्रांगुल इतना मुख में बढ़ा दिया, अब उसके बाद मारणांतिक का एक एक प्रदेश बढ़ाएंगे, तो एक प्रदेश हमको अधिक चाहिए उसका माप मिलेगा, पश्चात एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रम से मुख में पूर्व के समान संख्यात प्रत्रांगुल बढ़कर स्थित क्षेत्र से दो प्रदेश अधिक 1000 योजन मारणांतिक समुदाय करने वाला क्षेत्र समान होता है। ये सिमिलैरिटी बता रहे हैं, पहले संख्यात प्रत्रांगुल इतना मुंह में बढ़ा और 1000 ही योजन उसने मारणांतिक समुदाय किया, तो वो बढ़ाने के बदले अभी दूसरा ऐसा लिया कि हाँ मारणांतिक समुदाय में एक प्रदेश बढ़ाया, और फिर संख्यात प्रत्रांगुल तक बढ़ाने पर जितना बढ़ा उसका, क्योंकि उसके भी विड्थ मुंह के वहां बढ़ रही है ना, तो कहते कि जो 1000 योजन और दो प्रदेश इतना करने वाले के समान होगी। अंतिम लाइन, इस प्रकार इस क्रम से आयाम के साढ़े सात राजू प्रमाण हो जाने तक ले जाना चाहिए। कौन सा? मारणांतिक का आयाम। मारणांतिक समुदाय अधिक से अधिक कितना लंबा हो सकता है? तो 7.5 राजू कब होगा? तो अभी हमने ये जो जलचर जीव दिया देखा है, स्वयंभू रमण समुद्र के आउटर किनारे पर था और उसको भी किसी देव ने वो भूमि पर पटक दिया, तो वेदना समुद्घात में उसने तो पहले इसको लंबा वेदना का नहीं लिया मेरे ख्याल से, खाली अभी अभी मारणांतिक खाली किया है, तो वो वायव्य कोण से क्या होगा? पहले आधे राजू से थोड़ा ज्यादा नीचे आएगा, फिर पूर्व की ओर पूरा एक राजू जाएगा, और फिर नीचे 6 राजू जाएगा, क्योंकि 7वां नरक 6 राजू नीचे है, तो ये 6 राजू ऊपर आड़ा एक राजू और वो आधे से थोड़ा ज्यादा, इस तरह से साधिक 7.5 राजू हो जाता है। इस क्षेत्र से जो लोकनाली, लोकनाली यानी त्रस नाड़ी जिसको हम कहते हैं, लोकनाली की वायव्य दिशा से, हमने कल देखा था ना ये लोकनाली अभी ऐसी है, एक राजू बाय एक राजू, पूरी ऊपर से नीचे, हम मध्य लोक में यहाँ इसको कट करते, ये ऊपर तक 14 राजू वाली है, मध्य लोक में कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी वो, और नीचे तक है ना 7 राजू तक नीचे गई हुई। अब इसके बीच में ये सबसे आखिरी वाला स्वयंभू रमण समुद्र का अंतिम तट बाहर की ओर का, अब ये वायव्य दिशा में नहीं, यहाँ कौन यहाँ शुरू हुआ उसका, तो आधे राजू से ज्यादा नीचे आया, ये उसका एक दंडक कहेंगे, फिर मोड़ लिया उसने, उसको कांडक 3 करता है, कांडक यानी उसके जो ये जो दंड कहेंगे, कांडक कहेंगे, मोड़ तो 2 ही हो गए और कांडक 3 हो गए, तो यहां दक्षिण की ओर आया आधे राजू से ज्यादा, फिर पूर्व की ओर गया वो पूरा एक राजू, और वहां से नीचे चला आया 7 राजू नहीं गया, 6 राजू ही गया, क्योंकि 7वें नरक में उसको जाना है, उसके नीचे 7वें नरक के नीचे एक राजू तो वो निगोद कलकल भूमि है ना, उस स्थावर लोग कहते उसको निगोद कहते, तो वहां तक पहुंचा। ये 3 दंडक कहलाते हैं। पहला विग्रह दंडक, ये मारणांतिक समुदाय भी ऐसा ही है, और विग्रह गति से जाएगा उसमें तो इसी रूट से चला जाएगा, पहला दंडक, फिर दूसरा दंडक और नीचे तीसरा दंडक, इसको 3 विग्रह दंडक कहते हैं। फिर पढ़ती हूँ, इस क्षेत्र से जो लोकनाली की वायव्य दिशा से 3 विग्रह कांडक करके मारणांतिक समुद्घात से मरण के पहले उत्पन्न होने के स्थान तक आत्मा के प्रदेश फैले रहते हैं, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो मारणांतिक समुद्घात से 7वीं पृथ्वी के नारकियों में अनंतर समय में उत्पन्न होने के सन्मुख अगले ही समय में वो नरक में उत्पन्न होने वाला है। उत्पन्न होने पर क्या होगा? उसका एक एक कांडक मिटा जाएगा, ये वापस आने वाला जीव नहीं लिया है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो इस तरह से मारणांतिक समुद्घात होता है और अगले ही समय में वहां उत्पन्न होता है, दूसरा कोई जीव पूरा समुद्र समेटता है, मूल शरीर में आता है और फिर उसी रूट से चला जाता है। तो ये कौन सा जीव लिया? अनंतर समय में नरक में जाने उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने के सन्मुख स्थित है, उसका क्षेत्र समान है। इस प्रकार बढ़कर स्थित तथा अभी ये उसके बिना वेदना समुद्घात के 7.5 राजू मानातिक समुद्घात करके जो स्थित है ये उसको लिया। अब उसके बाद और एक एक प्रदेश बढ़ाने हमको, उत्कृष्ट से नीचे तक ले लेंगे ना। हाँ, इस प्रकार बढ़कर स्थित तीसरी लाइन तथा दूसरा एक वेदना समुद्घात से तिगुणे विष्कम्भ व उच्छेद को करके मानांतिक समुद्घात से समुद्घात हुआ है, समुद्घात से ग नहीं चाहिए वहां। हाँ, ग और घ है ना, वो खाली घ रखना। मानातिक समुद्घात से 7.5 राजुओं के 9वें भाग को प्राप्त होकर स्थित हुआ। ये गणित आपको ख्याल नहीं आएगा शायद। पहले तो कौन सा लिया? बिना वेदना के और पूरे 7.5 राजू फैला है। अब दूसरा ऐसा जीव लिया कि वेदना समुद्घात किया है, तो विष्कम्भ तिगुणा और उच्छेद तिगुणा, 3 और 3 9 गुना हो गया, वो पूरा क्षेत्रफल 9 पट हो गए ना, 9 गुना। तो अभी यहाँ करते हैं, कहते वो कौन सा लिया जीव? वेदना समुद्घात किया हुआ, यानी तिगुना विष्कम्भ और तिगुना उच्छेद हो गया, और फिर उसने ऐसा मानांतिक समुद्घात पूरा नहीं लेना फिर, क्योंकि बिना वेदना समुद्घात के पूरा ट्रैवल किया हुआ जीव लिया। अब कौन सा लेना? वेदना समुद्घात वाला, और उसने अभी समुद्घात कितना किया देखो, 7.5 राजों के 9वें भाग को प्राप्त होकर सिद्ध किया। ये 7.5 का 9वां लेना। हाँ, तो ऐसा जीव लेना। ये दोनों जीव अवगाहना की अपेक्षा समान है। फिर से भी पहले को छोड़कर और इसे ग्रहण कर निरंतर सांतर क्रम से आयाम के 7.5 राजू प्रमाण को प्राप्त होने तक पहले के ही समान बढ़ाना चाहिए। निरंतर सांतर क्रम मैंने अभी बिना वेदना के इसको बढ़ाना और फिर वो वेदना वाला करके उसको घटाना, इस तरह से एक एक प्रदेश की डिफरेंस से हमको चाहिए वो सारी बातें। इस प्रकार बढ़ाने पर ज्ञानावरणीय के सब अजघन्य क्षेत्र विकल्पों के स्वामित्व की प्ररूपणा समाप्त हो जाती है, क्योंकि उत्कृष्ट को छोड़कर वो सारे अजघन्य क्षेत्र हो जाएंगे। उत्कृष्ट हमने देखे थे, अथवा सिक्स्थ मत्स्य को ही मानातिक समुद्घात से दीन विग्रह कांडकों को कराकर साधिक 7.5 राजु आयाम को प्राप्त कराना चाहिए। सिक्स्थ मत्स्य क्या है पता नहीं, सिद्ध इति पाठा सिद्ध मच्छो, सिद्ध मच्छ ने जो हमें अभी जो जिसकी बात कर रहे हैं उसी की बात है, जिस विशिष्ट मत्स्य की बात कर रहे हैं उसी की बात है। तो उसको मानांतिक समुद्घात से 3 विग्रह कांडकों को कराकर साधिक 7.5 राजु आयाम को प्राप्त कराना चाहिए। पार्श्व क्षेत्र के बढ़ाते समय एक साथ पार्श्व क्षेत्र में वृद्धि को प्राप्त 7.5 राजुओं को प्रत्रांगुल के संख्यात्वे भाग से खंडित करके उसमें से एक खंड प्रमाण को आयाम में से कम करके सदृश कर फिर सांतर निरंतर क्रम से कम किए गए क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। अभी हमने देखा था ना, ये पूरा 7.5 का 9वां भाग ऐसे बढ़ाते 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 कितना, एक खंड कम इतनी यहाँ तक ले जाना चाहिए। यानी 7.5 राजू को प्रतरांगुल के संख्यात विभाग से खंडित करके एक खंड जितना होगा उतना मारणांतिक समुद्धात में से कम करना है। सदृश इस प्रकार ये इशू हो गया, नहीं ये बीच में रही है ना, पर इस प्रकार बार बार पार्श्व क्षेत्र को बढ़ाकर पूर्व क्षेत्र के समान करके पश्चात कम किए गए क्षेत्र को बढ़ाकर महामत्स्य के उत्कृष्ट समुद्घात क्षेत्र के सदृश होने जाने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार वो ईशु दिख रहा है, इस प्रकार ज्ञानावर्णीय के अजगण्य क्षेत्र संबंधी स्वामित्व की प्ररूपना समाप्त होती है। यहाँ क्षेत्र स्थानों के स्वामीभूत जीवों की प्ररूपणा में ये जो क्षेत्र के स्थान बताए हैं उसके स्वामी जो जीव है, अभी हमने देखे ना सूक्ष्म निगोध है, वायु कायिक है, ये जो कुछ है वह तो हमने बात की थी। ज्ञानावरणी का क्षेत्र कितना है, तो ज्ञानावरणी का क्षेत्र ज्ञानावरणी किसके, तो जीव के है, तो उसके स्वामी कोई जीव तो है वहां पर। अभी जिनके जिनके हमने नाम देखे 64 तक देखे, फिर उसकी समुद्घात करके उसका क्षेत्र बढ़ाया, ये जो बातें हमने देखी थी, तो ये जो स्वामी उसके स्वामी यानी वे जो जीव है उनका कथन करते समय क्या क्या कहेंगे, प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवहार, भागाभाग और अल्पभूत्व, ये 6 अनुयोग द्वार है। प्ररूपणा यानी उस स्थानों में जीव है ये कहेंगे वो प्ररूपणा हुई, उस स्थानों में कितने जीव है वो हो गया प्रमाण। जैसे सूक्ष्म निगोध वगैरह हम देखते हैं वहाँ कितने हैं तो अनंत जीव है, वायु कायिक आदि में कितने जीव है तो असंख्यात है, द्विंद्रियादिकों में कितने वो पंचेंद्रिय तक कितने तो असंख्यात असंख्यात, बाकी सब में तो असंख्यात असंख्यात जीव है, इस तरह से वो प्रमाण बताएंगे। श्रेणी ने जैसे हमने पहले जीव देखे उससे दूसरे जीव कितने गुना है, अगले अगला स्थान कितने गुना है, उसके भी हमने देखे थे। सूक्ष्म से सूक्ष्म वो आवली के असंख्यात विभाग गुना होता है, सूक्ष्म से बादर पल्य का असंख्यात विभाग, बादर से बादर पल्य का असंख्यात विभाग, इस तरह से उसकी गुणकार की प्ररूपणा, उसको श्रेणी कहेंगे। अवहार यानी वो प्रमाण निकालने के जो भागहार का प्रमाण है उसको अवहार कहते हैं। भागाभाग में उत्कृष्ट से शुरू करेंगे और वो उसके कितने भाग है, असंख्यात विभाग असंख्यात विभाग संख्यात विभाग जो कुछ है उसको भागाभाग कहेंगे। और अल्पभूत्व यानी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, छोटे से शुरू करके बड़े तक वो अल्पभूत्व कहेंगे। ये 6 अनुयोग द्वार है, इन 6 अनुयोग द्वारों की प्ररूपणा जैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्षेत्रों में की गई है वैसे यहाँ भी करना चाहिए। अनुत्कृष्ट बराबर नहीं दिख रहा है, एवं सत्तन्नम कम्माणम, इसी प्रकार शेष 7 कर्मों के जघन्य व अजघन्य क्षेत्रों की प्ररूपणा करना चाहिए। देखो ये ना उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं लिया, क्योंकि 8 कर्मों में जो घाती कर्म है और अघाती है तो जघन्य तो सब में समान होगा, अजघन्य भी सब में समान होगा, परंतु उत्कृष्ट क्षेत्र जो है किसमें, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षेत्र अभी हमने महामत्स्य का मारणांतिक समुद्घात वाला लिया, परंतु वेदनीय आयु नाम गोत्र में उत्कृष्ट क्षेत्र वो केवली समुद्घात वाले को होगा, उनके ज्ञानावरण है ही नहीं है, तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षेत्र वो समुद्घात अवस्था में नहीं हो सकता। तो वहां तो कौन कौन सा कर्म, तो जो बाकी है 4 कर्म बाकी है, तो चारों ही जब समुद्घात होता है तो अकेले जीव के प्रदेश ही फैलते, ऐसा नहीं है, जीव के साथ उसके जो कर्म है बंधे हुए वो भी पूरे ही जहां तक जीव के प्रदेश फैलते हैं वहां तक उसके कर्म भी फैलते हैं। अकेले जीव के प्रदेश ही फैलते मानेंगे तो क्या होगा, उतने प्रदेशों को मुक्ति हो गई, हाँ अच्छा है ना। तो ये जघन्य और अजघन्य में 8 ही कर्मों की प्ररूपणा समान है। हाँ तेजस और काम दोनों जाते हैं, क्योंकि जीव प्रदेशों के साथ है ना, वो तो औदारिक शरीर ही इतना पड़ा है, बाकी तेजस कर्म तो पूरा फैल जाता है। देखो जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के जघन्य व अजघन्य क्षेत्रों की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार शेष सात कर्मों के उक्त क्षेत्रों की प्ररूपना करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार अपने भीतर संख्या, स्थान और जीव समुदाहार को रखने वाली स्वामित्व प्ररूपना समाप्त हुई। यानी स्वामित्व क्या बताते हैं, उसमें संख्या बताते हैं, वो क्षेत्रों के स्थान बताए और उसमें कितने जीव है, जीवों का समूह है, तो उसकी भी बात उसी के अंतर्गत समाहित हो जाती है। हमने तीन अनुयोग द्वार मूल में देखे थे, एक तो पद मीमांसा देखे थे, फिर स्वामित्व की बात हुई, अब अल्पभूतव कहेंगे। क्षेत्र के बारे में ये बातें तीन मुख्य है। पद में हमने देखा था उत्कृष्ट होता है, जघन्य होता है, अजघन्य होता है, अनुत्कृष्ट होता है, आदि होता है, अनादि होता है, अनादि होता है, ध्रुव है, अध्रुव है, ओम है, विशिष्ट है, नोम विशिष्ट वगैरह वगैरह। युग्म भी देखा था, ओज भी देखा था, ये 13 पद देखे थे। और स्वामित्व में अभी ये क्षेत्रों के स्थान देखे अलग अलग, अब अल्प बहुत्व बता रहे हैं। अप्पा बहुएत्ति ऊपर का प्राकृत का, तथ्य इमाणी तिन्नी अनुयोग दाराणी जहन्न पदे उक्कस पदे जहन्नुक्कस पदे। अल्प बहुत्व अधिकृत है, यानी अभी यहाँ अल्प बहुत्व का अधिकार चलेगा। उसकी प्ररूपणा में ये तीन अनुयोग द्वारे, अनुयोग यानी उसके चैप्टर्स, उसके अधिकार तीन है। जघन्य पद में यानी जघन्य पद में अल्प बहुत्व, उत्कृष्ट पद में यानी उत्कृष्ट पद में अल्प बहुत्व और जघन्योत्कृष्ट पद में, ऐसे तीन प्रकार के अल्प बहुत्व बताएं। 23 बराबर दिख रहा है क्या? शंका, यहाँ तीन ही अनुयोग द्वार है, ऐसा संख्या का नियम किस लिए किया जाता है? ये जघन्य उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट ऐसे तीन ही क्यों है, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि और दूसरे अनुयोग द्वारों की यहाँ संभावना नहीं है। ये जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम ऐसे तीन ही भेद होंगे उसके। अब कहते जहन्न पदे अठन्नपि कम्माणम वेयणाओ तुल्लाओ। जघन्य पद अभी आठ कर्मों का जो जघन्य पद है तो उसको सबके लिए समान होगा, उसमें कोई अल्प बहुत्व नहीं होगा कि ज्ञानावरण के जघन्य वेदना कम है और वेदनी के जघन्य वेदना ज्यादा। इसका क्षेत्र देख रहे, संख्या नहीं। संख्या की बात हमने 10वीं पुस्तक में देखी थी, उसको द्रव्य विधान कहा था, वेदना द्रव्य विधान। अब इसको वेदना क्षेत्र विधान चल रहा है अपना। तो कहते हैं जघन्य पद में आठों ही कर्मों की वेदनाएं समान है। वेदना का अर्थ होता है वो कर्म प्रकृति, उसका जो कुछ है वेदना, कर्म को ही वेदना कहा है, वेदना यानी कर्म, उसका यहाँ क्षेत्र की बात चल रहा है। वेदना समान है, वेदना का क्षेत्र समान है। वेदना यानी हमको जो वेदना होती है बीमार पड़ने पर, उसकी बात नहीं है। वेदना यानी कर्म को ही वेदना कहा है। इसका कारण यह है कि अब जघन्य कहाँ होता है, तो हमने देखा था सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक जीव, वो भी कौन सा, रुजुगति से आया है, आहार होके तीन समय हुआ है, तद्भवस होके तीन समय, तो तीसरे समय में वो भी जघन्य अवगाहना वाला ऐसा कोई जीव है, उसमें भी बहुत रेंज होगी, तो मिनिमम पॉसिबल ऐसी जो अवगाहना होगी तो उसको वहाँ ज्ञानावरण का दर्शन का सबका क्षेत्र भी मिनिमम होगा, क्योंकि जीव छोटा है तो कर्म तो जितना जीव है उतने में कर्म फैले हुए हैं। जितने जीव के प्रदेश है उतने ही कर्म है, हा? बराबर ना, क्षेत्र 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 क्षेत्र, संख्या नहीं। जितना जीव का क्षेत्र है उतना ही कर्मों का क्षेत्र है, कारमान शरीर तेजस शरीर, औदारिक शरीर का क्षेत्र उतना ही होगा कि ज्यादा होगा, हाँ। हम संख्या कहाँ देख रहे हैं, कुछ कम होगा। अब किसी के केस बढ़ गए हैं तो क्या होगा ये नाखून बढ़ते हैं तो क्या होता है? वो क्षेत्र उसका जाता है। अब यहाँ वो विषय नहीं है। देखो इसका कारण यह है कि तृतीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ होने के तीसरे समय में वर्तमान यानी वहां रहने वाला सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक जीव के जघन्य योग के होने पर, वहां भी किसी का योग ज्यादा है किसी का कम है, तो उसमें भी कम योग वाला लेना जीव जघन्य योग के होने पर आठों ही कर्मों का जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। हमने देखा था तीसरा समय क्यों लिया, पहले समय में तो ऐसा लंबा पुस्तक जैसा लंबा फैलता है, दूसरे समय वो चौकोर हो जाता है, समय चतुरस्र हो जाता है, और तीसरे समय में राउंड होता है, गोल हो जाता है, तो उसका क्षेत्र कम हो जाता है। इसीलिए जघन्य पद में अल्प बहुत्व नहीं है, जब मिनिमम पॉसिबल है उसमें कौन छोटा कौन बड़ा ऐसा नहीं हो सकता, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। यानी उत्कृष्ट में भी अल्प बहुत्व ज्ञानावरण और वेदनीय में डिफरेंस होगा, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट होगा और वेदनीय का उत्कृष्ट होगा, उसमें कौन सा बड़ा है, वेदनीय का उत्कृष्ट बड़ा है, परंतु जघन्य सबके लिए समान है, ये बात बताना चाहते हैं। अब उत्कृष्ट की बात करेंगे। उत्कृष्ट पदे नानावर्णीय दंसनावर्णीय मोहनीय अंतरायणम वेयनाओ खेतदो उक्कसियाओ चत्तारी भी तुल्लाओ थोआओ, क्या कहते हैं उत्कृष्ट पद में। अब ये जो चार घाती कर्म है, तो जो अभी हमने उत्कृष्ट अवगाहना देखी थी महामत्स्य को मारणांतिक समुद्गत अवस्था में, तो वहां चारों ही कर्मों के समान है, वहां तो वेदनी की भी उतनी रहेगी, परंतु वेदनी के लिए उत्कृष्ट कब देखा था, केवली समुद्गत, तो इन चार को समान कहा। क्षेत्र देखना है अभी, नंबर ऑफ परमाणु नहीं देखने हैं। हाँ, उत्कृष्ट पद में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनी और अंतराय इन कर्मों की वेदनाएं क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही समान व स्तोक है। स्तोक किसकी अपेक्षा, अब आघाती की अपेक्षा स्तोक, स्तोक यानी कम, स्तोक का अर्थ होता है कम अल्प। फिर शंका, इन वेदनाओं के समानता कैसे है, यानी सबका क्षेत्र समान कैसे हो सकता है, उसका समाधान, इसका कारण यह है कि उनका स्वामी एक है। एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं ना, हाँ, जो अधिक से अधिक अवगाहना वाला जीव हमने देखा था महामत्स्य है, जो मारणांतिक समुद्घात करके सातवें नरक में जाने वाला, वो भी वेदना समुद्घात भी किया है और फिर मारणांतिक समुद्घात भी किया है, ऐसा जीव लिया था। तो एक जीव तो वही है, इसलिए उसकी जो ज्ञानावरण है दर्शनावरण है मोहनीय है अंतरा है, उसका भी क्षेत्र उतना ही फैलेगा, उस अवस्था में उसके वेदनीय वगैरह भी उतने हैं, परंतु वेदनीय के लिए उत्कृष्ट और कोई अन्य जीव है, इसलिए उसको इसमें नहीं लिया। उनका स्वामी एक है। साधिक साढ़े सात राजुओं द्वारा संख्यात प्रतरांगुलों को गुणित करने पर, ये संख्यात प्रतरांगुल किसकी बात आई, संख्यात प्रतरों को गुणित करने पर घातिया कर्मों का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। ये जो साढ़े बारह करोड़ घने योजन है ना, वो संख्यात प्रतरांगुल हुए, नहीं समझे, ये उसकी अवगाहना कितनी है, साढ़े बारह करोड़ घने योजन और वेदना में तिगुणा और वो तीन तीन, वो जो उसमें जो कुछ हो गया वो संख्यात प्रतरांगुल हो गया। अंगुलों में मापेंगे, क्षेत्र को भी अंगुलों से कर लिया है, असंख्यात तो नहीं होंगे अंगुल, संख्यात अंगुल होंगे, संख्यात यानी दो चार पाँच दस नहीं है, वो तो अब्जोम में चले जाएंगे, फिर भी जो है संख्यात, योजनों के कोष करेंगे, कोषों के तो फिर धनुष करेंगे, धनुषों के वो इस तरह से अंगुल तक आएंगे हम, फिर भी वो संख्यात अंगुल कहलाएंगे। एक माइल है और हम उंगली से मापेंगे तो उसमें संख्यात ही आएंगे ना उंगलियां, इस तरह से तो संख्या नहीं, जितना उसका स्प्रेड है ना अभी विड्थ, लंबाई में तो ऐसा जा रहा है वो, क्योंकि लंबाई उसके वो 7.5 में समा गई। नहीं, उसकी जो अभी विष्कम्भ और उच्छेद है वो उतना का उतना रहेगा। वेदना समुदात में उसने तिगुना तिगुना दोनों ओर से फैला है, वो 9 गुना हो गया। तो ऐसा कि 9 गुना हुआ, ऐसा पूरा मारणादिक समुदात करेगा, ये उसकी हाइट जो है ना, इन्हें ऐसा लंबा फैला है। तो आयाम तो वो 7.5 राजों में समा गया उसका, आयाम नहीं बढ़ता है, क्योंकि आयाम की ओर से तो उसने मारणादिक किया है ना, तो जितना लंबा गया वो उसी के अंदर आ गया, वो आयाम नहीं बढ़ता। वेदना समुद्घात में भी आयाम बढ़ता नहीं है, वो उसकी मोटाई वो बढ़ जाएगी। विष्कम्भ और उच्छेद देखो, घातीय कर्मों का हम मनुष्यों के लिए हाइट ऐसा कहेंगे हम, परंतु अभी वो मत्स्य जो है ना आड़ा फैला है, इसलिए उसको आयाम कहेंगे हम। हमारे लिए उच्छेद कहेंगे हमारी कितनी हाइट है, परंतु उसके लिए हम उसकी लंबाई, मनुष्यों के लिए भी लंबाई कहते तब हाइट ही लिए जाती है, और मत्स्य के लिए लंबाई कहेंगे तो आड़े ही दे, और उसकी जो हाइट यानी वो ऊपर नीचे कितना है, वर्टिकली कितना है, तो उसको हम कहेंगे 250 है या 500 है, जो कुछ है। यह घातीय कर्मों का उत्कृष्ट क्षेत्र है, यह आगे कहे जाने वाले क्षेत्र से स्तोक है, यह सूत्र का अभिप्राय। इसको छोटा क्यों कहा, यह तो सबसे उत्कृष्ट है, परंतु वेदनीय की अपेक्षा छोटा है ना, इसलिए इसको छोटा कहा। तो आगे के सूत्र में उससे भी बड़े ज्यादा बड़ा क्या है उसको बताते हैं। वेयनीय आऊणामा गोद वेयनाओ खेतदो उकसियाओ चत्तारी भी तुल्लाओ असंख्यज गुणाओ। ये महामत्स्य की जो अभी हमने फैला हुआ जो मानातिक समुदाय देखा, उससे भी असंख्यात गुणा, पूरा लोक व्यापने वाला है ना ये केवली समुदाय, वो असंख्यात गुणा हो जाता है। तो वेदनीय आयु नाम और गोत्र, इनकी वेदनाएं यानी ये कर्म क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही समान है, और पूर्व की वेदनाओं से असंख्यात गुणी है। पूर्व की यानी अभी हमने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी अंतराय की देखी, उसकी जो अधिक से अधिक थी उससे ये असंख्यात गुणी उसका क्षेत्र का प्रमाण है फैला हुआ। यह गुणकार जगप्रतर का असंख्यात वा भाग है, क्योंकि घाती कर्मों का जो उत्कृष्ट क्षेत्र वो क्षय दिख नहीं रहा, उत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल से गुणित जगत श्रेणी के बराबर है। देखो हमने कितना देखा था, 7.5 राजू और संख्यात प्रतरांगुल, 7 राजू यानी जगत श्रेणी, तो जगत श्रेणी को संख्यात प्रतरांगुल से गुणित करने पर इतना था, और अभी जो है वो कितना है, पूरा लोक है, घन लोक है ना पूरा, और उसका घन लोक में भाग देने पर जगत प्रतर का असंख्यात भाग पाया जाता है। अकेले श्रेणी से अगर भाग देंगे तो जगत प्रतर आता है, उसको संख्यात प्रतरांगुल से भाग दिया था ना, गुणा किया था, इसलिए वो जगत प्रतर का असंख्यात भाग आता है। अब ये तो जघन्य की बात हुई, उत्कृष्ट की बात हुई, अब जघन्योत्कृष्ट पद देखेंगे। जहन्नुक्कस पदेन अठन्नम पिकम्माणम वेदनाओ खेतदो जहन्याओ तुल्लाओ थोआओ। जघन्योत्कृष्ट पद से आठों ही कर्मों की क्षेत्र की अपेक्षा वेदनाएं तुल्य, तुल्य ने समान, वस्तोक है यानी अल्प है। यह सूत्र सुगम है, आगे कहे जाने वाले से यह अल्प है इतना समझना। नानावर्णीय दंशनावर्णीय मोहनीय अंतराय वेदनाओ खेतदो उक्कसियाओ चत्तारी भी तुल्लाओ असंख्यज गुणाओ। ये जघन्य और उत्कृष्टों में अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले जघन्य को अलग बताया, उत्कृष्ट को अलग बताया, अभी जघन्य उत्कृष्टों को एक साथ लेकर उसकी तुलना करेंगे। तो जघन्य में आठों ही कर्मों को लिया, और उनकी समान है बताई। तो आठों कर्मों की जघन्य की अपेक्षा से अब ये ज्ञानावरणी की बात करेंगे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनी और अंतराय कर्म की वेदनाएं क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट, चारों ही तुल्य वो पूर्वोक्त वेदनाओं से असंख्यात गुणी है। आठों ही कर्मों के जघन्य वेदना क्षेत्र से चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट वेदना क्षेत्र असंख्यात गुणा है। यहां तक आए हम बराबर। यहां गुणकार जगत श्रेणी का असंख्यात अभाग है, क्योंकि आठों कर्मों का जो जघन्य क्षेत्र अंगुल के असंख्यात भाग है। हमने जो निगोच की बात देखी थी वो अंगुल का असंख्यात भाग है, उच्छेद अंगुल, उच्छेद घनांगुल का असंख्यात भाग, निगोद की अवगाहना। और यहाँ कितने संख्यात प्रतरांगुल, अभी वो महामत्स्य की देखी थी और उसको भी हमने, हाँ वो गुणा किया था। उसका घाती कर्मों के उत्कृष्ट क्षेत्र में भाग देने पर भी सूची अंगुल के, सूच्यंगुल के, सूची अंगुल ने सूच्यंगुल, अंगुल कहो या सूच्यंगुल, देखो घनांगुल कहते तब अंगुल गुणा अंगुल गुणा अंगुल, यानी क्यूबिकल होता है ना। जैसे हमको रूम का क्षेत्रफल कितना है, घर कितना बड़ा है, तो हम तो क्षेत्रफल बताते हैं, रूम की हाइट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घनफल आएगा। तो वैसे अंगुल यानी उसके एक सिंगल लाइन में लंबाई, प्रतरांगुल यानी अंगुल गुणा अंगुल, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, चटाई क्षेत्र कहो जो कुछ है, कारपेट एरिया कहते हैं ना। और घनांगुल कहेंगे तो अंगुल गुणा अंगुल गुणा अंगुल। तो अभी हम निगोद को देखा था, वहां अंगुल के असंख्यात भाग कहा था, वो तो घनांगुल समझना। अब यहाँ जो समझा रहे हैं, सूच्यंगुल के असंख्यात भाग से जगत श्रेणी को खंडित करने पर उसमें से एक खंड पाया जाता है, यानी वो इतने गुणा है जगन्य से ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट असंख्यात गुणा है। अभी उसके आगे की कंपैरिजन करेंगे। अब वेदनी आयु वगैरह की उत्कृष्ट क्षेत्र बताएंगे। सूच्यंगुल दो, हाँ वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म की ऊपर नहीं पड़ा ना। वेयनीय आयु नामा गोद वेयनाओ खेतदो उक्कसियाओ चत्तारी भी तुल्लाओ असंख्यज गुणाओ। पहले हमने अलग अलग देखे थे, अभी जघन्य में आठों कर्मों को लिया, फिर नंबर है ज्ञानावरण की उत्कृष्ट का और उससे भी असंख्यात गुणा इसे आघाती के उत्कृष्ट का। वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म की वेदनाएं क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट, चारों ही तुल्य, चारों की समान। जितने अभी केवली का समुदाय पूरे लोक में फैला है, तो चारों ही कर्म पूरे लोक में, एक जीव के कर्म पूरे लोक में फैले हैं। कर्म कितने हो गए, इतना सारा खिपा कर आया फिर भी चारों ही तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओं से असंख्यात गुणी है। यहाँ गुणकार सुगम है, वो पहले बताया है ना उन्होंने, जगत प्रतर का असंख्यात भाग अभी हमने 54 पृष्ठ पर अंतिम लाइन में देखा था। पहले प्ररूपना की जा चुकी है जगत प्रतर का असंख्यात भाग। यह अल्प बहुत्व सूत्र चूंकि सब जीव समासों का आश्रय करके नहीं कहा गया है, अतएव अब सब जीव समासों का आश्रय करके, जीव समास याद है किसको कहते हैं, वो सारे एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये सात हुए, सबके अपर्याप्त और पर्याप्त, ये जीव समास कहलाते हैं। तो यहाँ कहते हैं अब ये अल्प बहुत्व जो है वो सब जीव समासों का आश्रय करके ज्ञानावरणी आदि कर्मों के जघन्य व उत्कृष्ट क्षेत्र की प्ररूपणा करने के लिए अल्प बहुत्व दंडक कहा जाता है। कर्मों के चाहिए, उसमें बिंदी नहीं आई है। अब जो हमने देखे थे इतनी सारी जो अवगाहनाएं, उसी की बात फिर दोहराएंगे और कुछ नहीं। यहां से आगे, अरे ऊपर सूत्र बताएं, एतो सव जीवेशु ओगाहन महादंडो कायवो भवदी। ये अवगाहना का महादंडक, यानी पूरी एक एक से दूसरी अवगाहना कितने गुनी है उसका, ये पूरा जो हमने पहले देखा था, हमने वो तो जघन्य में देखा था, अब ये पूरा ही सबकी अपेक्षा बताएंगे, उसको महादंडक कहा है। यहां से आगे सब जीव समासों में यह अवगाहना दंडक करने योग्य है, यानी कौन से जीव से कौन से अवगाहना कितने गुना है उसको बताएंगे। अवगाहना महादंडो, अवगाहना महादंडक करने योग्य है, महाशब्द चाहिए वहां पर, ये बड़ा है ना सब पूरे, हमने चौसर देखे थे अवगाहना है। अब हम पढ़ेंगे क्रम से, उन्होंने भी इसको 1, 2, 3, 4 नंबर दिया है क्यों, यानी ये जो हिंदी में, अब देखो 31 नंबर, ऊपर और नीचे हम पढ़ते जाएंगे। संवत्थोवा सुहम निगोद लद्धि अपजयतस जहनिया ओगाहना, सूक्ष्म निगोद लब्ध लिखा है लब्धि, लब्ध्य करना, यानी लब्धि अपर्याप्त का अर्थ होता है, ध को और ये किया लगाना, लब्ध्य पर्याप्त की जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक है, यानी लब्धि अपर्याप्त की, हमने इसी से शुरू किया था, वो कितनी है, एक उच्छेद घनांगुल में पल्योपम के असंख्यात भाग का भाग देने पर इस जघन्य अवगाहना का प्रमाण होता है। ये घनांगुल के पीछे उच्छेद क्यों लगाया, और भी कोई है थे घनांगुल, प्रमाणांगुल एक होते हैं और आत्मांगुल होते हैं, तीन प्रकार के अंगुल हैं, एक ये अंगुल जो उच्छेद अंगुल बताया है, दूसरा होता है प्रमाणांगुल और एक होता है आत्मांगुल। उच्छेद अंगुल ने हमने क्रम से देखा ना, इतने परमाणुओं का ये सारे वो त्रटरेणु त्रसरेणु वो भूमि के बाल वगैरह वगैरह उसकी बात करते 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 फिर लीख और जू और जव तक आ गए, तो 8 यवों का एक अंगुल होता है उसको उच्छेद अंगुल कहते हैं। प्रमाण अंगुल किसको कहते हैं, तो अवसर्पिणी का जो पहला चक्रवर्ती है उसका अंगुल का प्रमाण है, उसको प्रमाण अंगुल कहते हैं, यानी 525 धनुष हाइट वाला जो है ना उसकी बात, तो उसको प्रमाण अंगुल कहते हैं, इससे वो 500 गुना का फर्क पड़ता है। और आत्मांगुल अभी जो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में या देव और नार की जो कुछ है अलग अलग जीव है उनका अपना अपना अंगुल का जो प्रमाण है उसको आत्मांगुल कहते हैं। जैसे अभी हम पंचम काल के जीव है, हमारा अंगुल इतना है, और अभी आदिनाथ भगवान के काल में अंगुल कितना था, अब उसकी बात छोड़ो, भोग भूमि के पहले काल में, पहले भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि में कितना बड़ा होगा, वहां तो कितनी हाइट थी, 3 कोस, हाँ 2000 कोस नहीं, हाँ 2000 कोस है, 3 योजन कितनी है, 6000 धनुष थी ना, 6000 धनुष है ना, हाँ। तो ये 2000 क्या कह रहे हैं, निकालो भाई। हाँ तत्वार सूत्र में भी है, अभी तत्वार सूत्र में आसान पड़ेगा, वो बड़ी फोटो है, 1 मिनट, हाँ हाँ, प्रत्रांगुली ने अंगुल गुणा अंगुल प्रत्रांगुल, अभी ये जो आप ये देखो अभी हम देखेंगे ना, अभी अब क्षोपशम ज्ञान है बाबा, कहीं किसी का कम ज्यादा हो जाता है। देखो इसमें जघन्य आयुष्य आयुष्य तो तेनो कोष्टक 264 पर देखो 2000 धनुष यानी एक कोष हो गया ना अभी। निकालो देखो 252 पृष्ठ निकालना। गुजराती है आपके पास के हिंदी है? हाँ देखो भरत आयुराज क्षेत्र के जो मनुष्य है उनकी जो आयु और लंबाई वगैरह सके बताइए। तो पहला जो उत्तम भोग भूमि है उसमें 3 पल्ले उसकी आयु है, स्टार्टिंग में 3 कोस उसकी हाइट है ऊंचाई, और अंत तक 2 कोस हो जाती है। 3 कोस यानी 6000 धनुष हो जाते हैं, 2000 कोस नहीं। ये उच्छेद का भी देखो प्रमाण, ये हमने पहले भी देखा था, ये 265 पृष्ठ पर है तत्वार सूत्र में गुजराती में। अभी उसमें भी वो बहुत ये अनंत अनंत पुद्गल है, उसका उत्संन्या संन्या है, 8 उत्संन्या संन्या का 1 संज्ञा संज्ञा है, 8 संज्ञा संज्ञा का 1 त्रट रेणु है, 8 त्रट रेणु का 1 त्रस रेणु है, 8 त्रस रेणु का 1 रथ रेणु है, 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, ऐसे 8 अग्रभागों का मध्यम भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, ऐसे 8 का जघन्य भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, ऐसे 8 का कर्म भूमि के बाल का अग्रभाग, कर्म भूमि, फिर ऐसे 8 अग्रभाग का 1 लीक, ऐसे 8 लीक का 1 जू जिसको सरसों भी कहा है, और ऐसे 8 जव का 8 जू का युक यानी जू, 1 यव होता है यानी जव नाम का अनाज, और ऐसे 8 जवों का 1 अंगुल होता है उसको उच्छेद अंगुल कहते हैं, और 500 उच्छेद अंगुल का 1 प्रमाण अंगुल होता है, 6 अंगुल का 1 पाद होता है, 2 पाद का 1 विलस्त होता है, 2 विलस्त का 1 हाथ होता है, 2 हाथ का 1 गज होता है, 2 गज का 1 धनुष होता है, 2000 धनुष का 1 कोष होता है, और 4 कोष का 1 योजन होता है। महायोजन में तो 1 योजन 4 कोष का, अभी उसको 500 गुना करो, 2000 कोष का 1 योजन हो जाता है, यानी वो अंगुल में ही 500 गुना करना और फिर उस माप से आगे का पूरा माप निकालना। तो अपनी बात कहां से चल रही थी? उत्तम भोग भूमि वाले की जो हाइट जो है, हाँ उच्छेद अंगुल की बात ख्याल में है ना, उच्छेद धनांगुल। आत्मांगुल की बात चल रही थी कि तो भोगभूमि वाले का आत्मांगुल कितना बड़ा होगा ख्याल है? 6000 धनुष वाला, हाँ 500 धनुष वाला तो हमने 500 गुना किया, अभी उसको उसके गुना में करते रहो। एक बात हो गई भाई, 31 नंबर का सूत्र हो गया अपना। अब 32 में देखते हैं। सुहम वाऊक काय अपजते स जहनिया ओगाहना असंख्य जगुणा, कितने असंख्यात गुणा होगा ये इसका? न अवलिका संख्या, सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, हाँ लब्धि अपर्याप्त, ये सारे लब्धि अपर्याप्त की है। ये यहाँ केवल अपर्याप्त लिख दिया, परंतु उसमें भी अपर्याप्तों में भी लब्धि अपर्याप्त की सूक्ष्म है, तो उसी को ले लेना। 32 का अर्थ देखते, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। ये 64 जो हमने देखे थे ना वो तो क्रम से आने वाले, हाँ वही टॉपिक आपके लिए फिर दोबारा ले रहे, उनको पता था कि आप बाद में आने वाले हैं। यहाँ गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग है, और निगोद की जो हमने अवगाहना देखी थी उसमें एक एक प्रदेश बढ़ते 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 असंख्यात गुणा हो जाएगी। उन्होंने नंबर डाले हैं, हाँ नंबर भी उन्होंने डाले हैं। हाँ देखो, यहाँ गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग है। अपर्याप्त कहने पर देखो आपका लिखा है, अपर्याप्त कहने का उससे लब्धि अपर्याप्त तो करना क हो गया, त क चाहिए, अपर्याप्त क लब्धि अपर्याप्त का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि निवृत्ति वो निवृत्ति हुआ है। हिंदी वाले व को ब और ब को व करते हैं बहुत। हम शिविर कहेंगे वो शिविर कहेंगे, शिविर। और अब और जहाँ हम वो कहते वहाँ वो ब कहते हैं, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना आगे कही जाने वाली है। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ 33 नंबर का सूत्र, सुहम तेउक का यह अपजत्य से जघन्य अवगाहना असंख्य गुणा, उससे सूक्ष्म तेज का एक यानी अग्नि का एक, सूक्ष्म तेज का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग है, यहाँ लब्धि अपर्याप्त का ही ग्रहण करना चाहिए। अभी बिना कहे हुए जो जघन्य में लब्धि अपर्याप्त को ही लेना। सुहम आवुक का यह अपजत्य से जघन्या उगाहना असंख्य गुणा, उससे आऊ यानी अपकायिक, अप यानी जल, उससे सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त की क रह गया, अपर्याप्त क। अपर्याप्त की जघन्य उगाहना असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग है, यहां भी लब्धि अपर्याप्त का ग्रहण करना चाहिए। ये 5 नंबर अभी यानी 35वां सूत्र। हाँ अभी सब जगह नहीं डाले उन्होंने, ब्रैकेट्स नहीं डाले, इसके आगे कहीं नहीं डाले। सुहम पुढ़वी काय लब्धि अपजत्य से जहन्या उगाहना असंख्य गुणा, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक लब्धि अपर्याप्त की जघन्या उगाहना उससे असंख्यात गुणी है। गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग है। अब ये सूक्ष्म के बाद बादर शुरू होगा तो गुणकार करेंगे पल्य का असंख्यातवा भाग बढ़ जाएगा। बादर वाऊ का ये अपजत्य से जहन्या उगाहना असंख्य गुणा, उससे बादर वायु का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। यहाँ गुणकार पल्योपम का असंख्यातवा भाग है। अब यहाँ गुणकार बदला ना, पल्य का असंख्यातवा भाग हो गया। अब बादर टू बादर पल्य का असंख्यातवा भाग हो जाएगा। बादर तेउक का यह अपजत्य से जहन्या अवगाहना असंख्य गुणा, उससे बादर तेज का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। गुणकार पल्योपम का असंख्यातवा भाग है। ये अल्प बहुत है ना, इसलिए इससे ये गुणा ये गुणा, पहले तो उन्होंने बहुत डिटेल में एक एक प्रदेश से वृद्धि होती है, तीन वृद्धियां होती है, ये सब उसमें बताया था। अब ये डायरेक्ट अल्प बहुत बता रहे किससे कौन सा कितने गुणा है, इतनी बात बता रहे, इसलिए विषय तो पुनः वही रिपीट हो गए, ये सब अपने पढ़ा हुआ था। ये 38 नंबर, बादर आउक का ये अपजत्य से जहन्या उगाहना असंख्य गुणा, उससे बादर जल का ही अपर्याप्त की जघन्या उगाहना असंख्यात गुणी है। यहाँ गुणकार पल्योपम का असंख्यातवा भाग है। आगे बादर पुढ़वी का यह अपजत्य से जहन्या उगाहना असंख्य गुणा, उससे बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। देखो सूक्ष्म में तो निगोद को पहले लिया था, अब यहाँ बाकी सबको लिया, फिर बाद में निगोद को ले लेंगे। हाँ 14 से ज्यादा, क्योंकि वहां निवृत्ति अपर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, वो ऐसे अकेले 14 जीव समास नहीं लिए, उसमें और भेद किए। हाँ निगोद को भी अलग लिया, वहां तो एक इंद्रियों में भी और भेद किए नहीं, इसलिए हम तो एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर देखे थे, यहाँ सूक्ष्म में भी एक इंद्रियों के भेद किए, बादर में भी भेद किए। जीव समास जितनी अपेक्षाएं लगाए उतने बढ़ जाते हैं, उसमें भी हमने अपर्याप्त पर्याप्त इतने ही कहे थे, अपर्याप्त में भी निवृत्ति अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त दो भेद करेंगे। इस तरह से जीव समास बढ़ सकते हैं 14, तो बेसिकली यानी कॉमनली 14 बताते हैं, अपेक्षाओं से उसमें भी बहुत सारे भेद कर देते हैं। देखो यहाँ भी गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है, 58 पृष्ठ पर आए हम, 40 नंबर का सूत्र। अभी निगोद का नंबर लिया है, बादर निगोद जीव अपजत्य जहनिया उगाहना असंख्य गुणा, उससे बादर निगोद जीव अपर्याप्त की जघन्य उगाहना असंख्यात गुणी है, गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है। अब उसके बाद निगोद प्रतिष्ठित, यानी ये प्रत्येक की बात है, प्रतिष्ठित प्रत्येक जिसको हम कहते हैं, तो निगोद प्रतिष्ठित अपजत्यस्य जहन्या उगाहना असंख्यज गुणा, उससे निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त की जघन्य उगाहना असंख्यात गुणी है, गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है। हाँ, पर्याप्त होने पर उसमें से निकल जाते हैं। हम देखें ना, जो प्रत्येक शरीरी वनस्पति कायिक है, पहले एक अंतर्मुहूर्त में या बहुत छोटे जो हम देखे उसमें रेशा नहीं आई है, पन्ने हैं एकदम लाल जैसे छोटे छोटे दिखते हैं, छोटे छोटे फल हैं। निगोद जीव अलग है, उसके आधार से रहने वाले हैं। हाँ, क्योंकि वो उनका रहने का ठिकाना है। निगोद जीव किसके आधार से रहे हैं? वो जो प्रत्येक शरीर वाले जो अपर्याप्त अवस्था में है उसके आधार से ये रहते हैं, उसके आधार से उत्पन्न होते हैं। अलग अलग ठिकाने हैं ना उनके उत्पन्न होने के, जैसे मनुष्य तिरंचों के शरीर के आधार से भी रहते हैं, वैसे वहां भी रहते हैं। सूक्ष्म के लिए तो कोई आधार की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बादर निगोद प्रतिष्ठित भी कहते हैं। सूक्ष्म नहीं, बादर। हाँ, देखो आपका प्रश्न है क्या मोड़ में साथ में आपके साथ आहार शरीर औदारिक शरीर है क्या मोड़ में? औदारिक शरीर के आधार से रहते हैं। पर्याप्ति पूरी नहीं होती उसका कुछ बात नहीं है, पर्याप्ति पूरी होने की जरूरत नहीं, वहां तो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण किए हैं तो उनके वो सचित्त योनि है, वहां से उत्पन्न होते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ग्रहण तो पहले समय से है, लब्धि अपर्याप्त को भी है ना, पर्याप्ति पूरी होने की भी जरूरत नहीं। हाँ, एक ही समय में आहारक शरीर, सॉरी आहार क्या आ रहा है, औदारिक शरीर उसने ग्रहण किया है, तभी से उसके निगोद भी उसमें उत्पन्न हो गए फर्स्ट समय। हाँ, ये तो लब्धि अपर्याप्त के लिए ना, यहाँ पर लब्धि अपर्याप्त भी लिए, अपर्याप्तों के आधार से रहते ना वो। निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वाले अभी कैसे अपर्याप्त है, वो प्रत्येक शरीर वाले भी अपर्याप्त जीव लिए, वो भी मरने वाले हैं, वो निगोद भी जाएंगे उसके साथ। शरीर पूरा बनने की क्या जरूरत है, वहाँ के औदारिक जाति के परमाणु तो ग्रहण किए हैं उसने। वो खलरूप रसरूप, अभी वो तो निगोत तो कहीं भी रहे ना, उसके आधार के यानी ऐसा शरीर तो है, शरीर के परमाणु तो है वहाँ पर, उसकी अवस्था कुछ भी हो अरविंद है कहते निगोत के लिए आओ, पूरा पुस्तक आएगा आगे। तो हमारी सभी जिज्ञासाएं पूरी होने वाली है अरविंद भाई कहते हैं कि अभी आगे क्या आने वाला है वो तो अट्रैक्शन दिखा रहे हैं ना अभी 11वां भाग चल रहा है, अभी और 5 भागों में कहीं आएगा ऐसा कहते हैं देखे 12वां पढ़ा ना हमने, उससे बादर वनस्पति का ही नहीं, ये नहीं पढ़ा, निगोद प्रतिष्ठित पढ़ा था, देखो देखो फिर पढ़ती हूँ 11वां। उससे निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त की, ये प्रत्येक शरीरी है परंतु प्रत्येक शरीरी जीव अपर्याप्त है और उसके आधार से यह निगोद रह रहे हैं। निगोद प्रतिष्ठित अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, फिर भी ये कितनी सूक्ष्म अवगाहना है इनकी, अभी सारे घनांगुल के असंख्यात विभाग में ही दौड़ रहे हैं। आगे वाला सूत्र 42 नंबर का, बादर वनस्पति काय पत्तेय शरीर अपजत्ते से जहन्य अवगाहना असंख्यज्य गुणा। उससे बादर वनस्पति काय प्रत्येक शरीर अपर्याप्त की, ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक लिया, पहले वाला वो प्रतिष्ठित प्रत्येक था, जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है, गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है। अभी इसके बाद द्विंद्रिय शुरू हो जाएंगे। बीन्द्रिय अपजत्ते स जहन्य उगाहना असंख्यज्य गुणा, उससे द्विंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य उगाहना असंख्यात गुणी है। ये लब्धि अपर्याप्त की समझने, सभी अपर्याप्त जो कहा है ना, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त उनकी अवगाहना छोटी होगी। गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है। तीन दिय अपजत्ते स जहन्य उगाहना असंख्य जगुणा, देखो ये निवृत्ति पर्याप्त और उसमें अपर्याप्तों में ये त्रिइंद्रिय का नंबर, फिर चतुरिंद्रिय का, फिर द्विंद्रिय का, फिर पंचेंद्रिय का ऐसा लिया था। ये अपर्याप्तों में तो रेगुलर द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय लिए हैं, तो त्रिइंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य उगाहना उससे असंख्यात गुणी है, गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग है। अब चौरिंद्रिय अपजत्ते से जघन्य अवगाहना असंख्यज्य गुणा, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है, गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग। ये दो इंद्रिय बिटवीन टू इंद्रिय थ्री इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पल्य का असंख्यात भाग। पंचेंद्रिय अपजत्ते से जघन्य अवगाहना असंख्यज्य गुणा, पंचेंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। ये कोई लब्धि पर्याप्त तरह से जीव उत्पन्न हो गए, ये कितनी छोटी अवगाहना वाले, ये आंखों से दिखे भी नहीं। अब कहते 17 नंबर पर, यानी ऊपर का 47 नंबर, सुहम निगोद जीव निवृत्ति पज्जत जहन्य अवगाहना असंख्यज्य गुणा, उससे सूक्ष्म निगोद जीव निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी। अभी तीन तीन की जोड़ी लेंगे, निवृत्ति पर्याप्त की जघन्य, फिर लब्धि अपर्याप्त की, अकेला अपर्याप्त कहेंगे उत्कृष्ट, और फिर निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट। देखो यहाँ गुणकार आवली का असंख्यात्व भाग है। अब 48 नंबर पर, तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्य उगाहना विशेषाह्य, वो असंख्यात्व भाग से अधिक है, हमने पहले पढ़ा था इसको। हाँ अंगुल अभी नहीं आया है, हाँ हमने कितनी बार, हमने पहले एक टेबल बनाया था, कितनी बार अवली का असंख्यात भाग गुना हुआ था और कितनी बार पल्य का असंख्यात भाग गुना था, आपका संदृष्टि अधिकार निकाल के देखो। हमने उसमें टेबल बनाया था पूरा साइंस, उसमें तो साइन लैंग्वेज है ना वो संदृष्टि अधिकार में है? आप गिन सकते हैं ना, पांच बार सूक्ष्म 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 लिए तो उसमें चार बार त्रावली का संख्या तो है, सूक्ष्म टू बादर आया तो पल्य का शुरू हुआ, बादर टू बादर पल्य, अब ये द्विंद्रिय तक पल्य का ही चल रहा है, अब पंचेंद्रिय तक आ गए, पंचेंद्रिय से फिर अभी सूक्ष्म निबोध में चले जाएंगे तो आवली का असंख्या तो अब आ गया, अभी कुछ अधिक कुछ अधिक कुछ स्थान है। हाँ, इसीलिए हमने जो सूक्ष्म निगोध की जो संदृष्टि देखी थी उसको, तो वो तो घनागुल के कितनी बार, 22 बार तो पल्य का असंख्या तो अभाव और इतनी बार आवली का असंख्या तो अभाव ऐसा किया था उसको, फिर एक एक बार गुना गुना करेंगे तो वो 18 बार होगा, फिर 17 बार होगा, ऐसे घटाया था आपको याद होगा तो। पहले में पहले कितनी बार हम जितना विशेष अधिक और जितना गुना करते जा रहे, इतनी बार संख्यात से गुना किया, इतनी बार पल्ले के असंख्यात भाग से गुना, इतनी बार आवली का असंख्यात, वो सारे भागाकार में लिया पहले ही निगोद के लिए, और बाद में बढ़ाएंगे तो वो भागाकार में से एक एक को घटा देना। देखो ये हमने अभी 47 पढ़े थे, अभी 48 पढ़ते। तस्सेव अपज्यतेस उक्कस्य अवगाहना विशेषाया, उसके ही अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है, उससे ने सूक्ष्म निगोद की, हाँ अपर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना उसके ही ऐसा कहने पर निवृत्ति अपर्याप्त का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि और किसी दूसरे के साथ प्रत्यासत्ति नहीं है। ऊपर निवृत्ति पर्याप्त की लिखा था, उसकी निवृत्ति अपर्याप्त की लेना। विशेष का प्रमाण कितना है, वह अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, जितनी अवगाहना थी उसका असंख्यात्व भाग लेना, उसमें बढ़ा देना, तो अभी भी अंगुल का असंख्यात्व भाग उसमें बढ़ा देना है। उसका प्रतिभाग क्या है, आवली का असंख्यात्व भाग उसका प्रतिभाग है। किन्हीं आचार्यों के अभिप्राय से वह पल्योपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, यानी कितना अधिक बढ़ाया उसका प्रमाण यहाँ बता रहे हैं। तस्सेव पज्यतेयस्य उक्कस्य अवगाहना विशेषाया, उसके ही पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। यहाँ पर भी उसके ही इस निर्देश से निवृत्ति पर्याप्त का ग्रहण करना चाहिए। निवृत्ति पर्याप्त कब कहते हैं, वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर निवृत्ति पर्याप्त कहते हैं। विशेष का प्रमाण कितना है, वह अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र है। अब 50 नंबर का, सुहुम वाउकाय पज्यतेस जहनिया उगाहना असंख्यज्य गुणा, उससे सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त की जघन्य उगाहना असंख्यात गुणी है। यहाँ गुणकार आवली का असंख्यात भाग है। यहाँ पर्याप्त ऐसा कहने पर निवृत्ति पर्याप्त का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की संभावना नहीं है। ये जो पूरे पर्याप्तों की उत्कृष्ट अवगाहना हमने अंत में देखी थी उसकी बात नहीं है, यहाँ निवृत्ति पर्याप्त की बात है। निवृत्ति पर्याप्त कहने वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने वाला। 51 नंबर, तस्सेव अपज्यतेस्य उक्कस्य अवगाहना विशेषाया, उसी के अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। उसी का अपर्याप्त है ना, भी निवृत्ति अपर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक विशेष कितना है, वह अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। तस्सेव पज्यतेस्य उक्कस्य अवगाहना विशेषाया, उसी के पर्याप्त की ये निवृत्ति पर्याप्त लेना, उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। हाँ, नहीं 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 अवलिका नहीं, अंगुल का ही असंख्यात्वा भाग है, परंतु उसके लिए प्रतिभाग, प्रतिभाग क्या है? प्रतिभाग अवलिका असंख्यात्वा भाग। वहाँ गुणकार था, क्योंकि 16 से 17 गुणा में था, और अभी वो 18 जो है वो विशेष अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक, तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग से भाग दिया है, तो कौन से असंख्यात्वा भाग से? आवली के असंख्यात्वा भाग से। आवली डिवाइडेड बाय, सॉरी, अंगुल डिवाइडेड बाय आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात। प्रतिभाग पूछा था ना, तो ये 52 तक हम रुकते हैं, उसी के पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाना उससे विशेष अधिक है। विशेष कितना है? वह अंगुल के असंख्यात्वे भाग है, वो तेज कायिक से हम कल ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। अश्विन भाई